नित्यं द्वैपायनोदिरहकातर्याजुहव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति दिव्यै राधेतमेनाम च चेतन चैतमित आदि चतुर्थ महाप्रभु जी के अवतार का कारण बतलाते हुए ये वर्णन किया कि कृष्ण के तीन प्रकार के उम्र होते हैं, कौमार, पौगंड और कैशोर, बचपन और लड़कपन और किशोर, जिसमें माता जी के पास में जन्म से लेकर 5 वर्ष तक कौमार काल का स्वागत किया। सर्वशक्तिमान होते हुए भी छोटे से बच्चे के रूप में करवट नहीं बदल पाते और शिशुचित समस्त लीलाओं को किया, तथा बात्सल्य रस का आस्वादन किया। जब कुछ बड़े हो गए तो 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की उम्र तक सखाओं को लेकर के पौगंड उम्र सफल किया। बच्चों के साथ में घर में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बंदर जैसा नाच रहे हैं, कोयल जैसा नाच कुहू कुहू कर रहे हैं, मेहक जैसा कुत्ते फंदते हैं, इस तरह से लीलाएं करते हैं, गोल चारण करते हैं और राधिका इत्यादि को लेकर के रासादि विलास के द्वारा वांछा भरी अष्टादि रस निध्यास प्रेम रस का निध्यास साथ उन्होंने गोपियों के साथ में अष्टादन किया। कैशोर वयस से काम जगत सफल रासादि मिलाए तीन करीब सफल क्या कैशोर उम्र में जगत सफल मानो क्या क्या होगा कैशोर वयस से काम जगत सफल रासादि मिलाए तीन करीब सफल क्या माने किशोर उम्र में काम को रासादि के द्वारा सफल किया जगत सफल मैंने क्या मैंने काम समूह को जगत में नहीं समूह काम जगत सकल रासादी लीलाओं के द्वारा तीन सफल कर किया तीन मैंने यहां क्या तीन मैंने क्या क्या नहीं देखो इसको लगाओ बचपन में कौमार काल में वात्सल्य के आस द्वारा सखाओं को पौगंड के पौगंड उम्र को सखाओं के साथ और किशोर वयस में गोपियों के साथ में काम को सफल किया इस प्रकार से तीनों को सफल किया ऐसे में कुमार पौगंड और किशोर में काम के द्वारा गोपियों के द्वारा राशि इत्यादि ने विविध प्रकार से उसको सफल किया। उसी के लिए उन्होंने एक श्लोक दिया विष्णु पुराण से उद्धृत कर कृष्ण स्वयं भगवान है वो आत्मारामों के भी आत्माराम क्या हुआ देखो ठीक है देखो आत्मारामों को भी आत्माराम है उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं है जिसको वो कभी पूर्ण नहीं कर सकते काम है, उनको कोई कामना नहीं। तभी माता पिता से, सखाओं से और गोपियों से अपेक्षा रहती है, उनके अंदर में काम नहीं रहने पर भी ये काम की उद्दीपना करा देती है, कामना की उद्दीपना करा देती है। कौन? सखा, माता पिता और गोपी सबसे अधिक ये करती हैं। और सबका तो उदाहरण दिया, किशोर उम्र के लिए उदाहरण नहीं दिया, उसके लिए श्लोक का ये दे रहे हैं विष्णु पुराण से। सो अपि कई सो रख भयो मानियन मधुसूदन रे में स्त्री रत्न कुटस्थो छपाशु खपिता हित। सो अपि कृष्ण सर्वशक्तिमान समस्त रसों के आधार रसस्वरूप होकर के भी रसिक बनते हैं, और रसिक बनकर के किशोर उम्र को मानेन मधुसूदन मधुमन रस उसका आस्वादन करने वाले रसशेखर जो कृष्ण है, कैसे रसशेखर हैं? दो रूपों में, आस्वाद्य एवं आस्वादक दोनों रूपों में है, रसस्वरूप भी है और रस को आस्वादन करने वाले भी। ऐसे कृष्ण अपने को सफल माना अपने जीवन को, कैशोर उम्र को रेमे स्त्री रत्न, स्त्रियों में जो सबसे चूड़ामणि के रूप में है, सबसे श्रेष्ठ है, जो लक्ष्मी जी से भी, द्वारका की महिषियों से भी जो श्रेष्ठ है, जो गुणों में रूप में सब प्रकार से श्रेष्ठ है, उनके साथ में रास इत्यादि के द्वारा छपता हित है, कोई हानि से रहित, अमंगल से शून्य, खपित अहित है, अर्थात छपाशु रात्रि में उनके साथ में कितने दिन की रात्रि, ब्रह्मा जी के एक रात्रि में उनके साथ में विभिन्न प्रकार के क्रीड़ाओं को किया, अथवा इसका स्त्री रत्न कुटस्थ है, स्त्री रत्न कुटस्थ है, कूटस्थ स्त्री रत्नों के बीच में स्थ रहकर, बीच में इतनी स्त्रियां हैं उनके बीच में अकेले कृष्ण, और ऐसा मालूम पड़ा जी सब गोपियों के साथ में एक कृष्ण है, एक एक कृष्ण है, बीच में मध्यस्थ में कूटस्थ, जैसे कूट गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ में परिक्रमा दी जाती है, ऐसे कृष्ण मध्यस्थ होकर के गोपियों के साथ में आवृत होकर के वहां पर ब्रह्मा की एक रात्रि में रास इत्यादि किए, और इस प्रकार अपने उस उम्र को उन्होंने महिमा मंडित किया। अथवा स्त्री रत्न कूटस्थ, गोपियों को ही कूट मान लो, पर्वत मान लो, अथवा गोवर्धन को कूट, स्त्री रत्न कूटस्थ गोवर्धन जो पर्वत है वो कूट माने पर्वत, उनके ऊपर में या उनके आसपास में इन्होंने रास इत्यादि कर करके और अपने किशोर अवस्था को सफल बनाया। बाचो सूचित सर्वरी रतिकला प्रागल त्वया राधिकम देवा कुंचित लोचनम ब्रचन अग्रे सखी नाम सौ तदवक्षो रूढ़ चित्र खेली मकरी प्राप्त पांडित्यता केशोरम सफली करोत कलोन कुंजे विहार। भक्तिगोस्वामी सिंधु ने इसके लिए रूप गोस्वामी ने एक श्लोक की रचना, उसमें से इसको उन्होंने लिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्ण कैसे हैं? बाचा सूजित सर्वरी रतिकला प्रबल्भताया राधिता, बाचा, बाचा माने वाणी। कृष्ण ऐसे रसिक हैं जिनकी बातें बड़ी रसीली है, एक एक बातों का हजार हजार अर्थ होता है। इस रूप में किसी का अर्थ ग्रहण करते हैं वही जैन। सूचित सर्वरी, कभी सर्वरी मैंने रात, रात की लीला में राधिका जी के मिलने के समय में प्रगल्भता, प्रगल्भता जो श्रीमती राधिका जी ने की, उसको सब सखियों के सामने मैंने कहा। और जिससे राधा जी लज्जित हो गई और आंख को ऊंचा कर दिया, कुछ लज्जित हो गई सखियों के सामने, कृष्ण ने ऐसी कोई बात कही, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बतलाई जो राधिका जी सुन करके अपने आप लज्जित हो गई और कृष्ण और सब गोपियां हंसने लग गईं। उसने उन्होंने पांडित्य प्रकाश किया उस लीला में। इस तरह से उन्होंने कई सोरम सफल कले कुंजे बिहार हो गई, कृष्ण ने कुंज में गोपियों के साथ में बिहार करके अपने किशोर जीवन को सफल किया। ये किंतु ये जगत की कोई चीज नहीं है लीला, ये लीला तो उतरती है और अपने परिकरों के साथ में होती है, जिसका इस जगत के लोग नहीं समझ सकते। साधारण रूप में इस जगत का नियम है स्त्री पतिव्रता होनी चाहिए और पुरुष को भी राम के समान होना चाहिए, स्त्री को सीता के समान होना चाहिए, यही नियम है। किंतु यह नियम इस पृथ्वी लोक में ही है, स्वर्ग में या स्वर्ग के लोकों में ये नियम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? उनका शरीर मन कुछ अलग है, उनका शरीर स्थूल हम लोगों जैसा नहीं है, इसलिए वहां नहीं होता। जैसे अर्जुन गए इंद्र के पास में, इंद्रलोक में सीखने के लिए, कुछ वनवास का समय एक वर्ष का टाइम थी और वहां से इंद्र के द्वारा बहुत सी कुछ अस्त्र शस्त्र ग्रहण करेंगे और तब फिर यहां पर युद्ध होने पर उसको काम में लगाएंगे। तो वहां गए, ये इनको इंद्र का पुत्र माना जाता है, इंद्र के अंश से आए हैं। कौन? अर्जुन में एक और अंश है जो कृष्ण के परिकर है, उस परिकर में इंद्र का यह अंश प्रवेश करके ऐसा मालूम होता है कि यही काम कर रहा है। तो अर्जुन एक ही है किंतु उनमें दो अर्जुन काम कर रहे हैं, एक कृष्ण के सखा अर्जुन उनके साथ में मिल गए हैं, इंद्र भी आए हैं आंशिक रूप में। तो ये अर्जुन वहां पर गए, लोगों ने देखा कि इंद्र के पुत्र आए हैं, बड़ा आदर किया उन्होंने। इंद्र ने अपने पुत्र के रूप में उनको अभिषेक किया और पुत्र के रूप में उनका आदर पालन लालन पालन किया, ये सभा में रहे। कुछ देर के बाद में वहां से उठ करके वो किसी काम से चले गए या कुछ समझ कर गए। उसी समय में अर्जुन ने उर्वशी के प्रति बड़ा ध्यान से देखा, उनके तरफ में एक तक देखते रहे कुछ देर, तो उर्वशी ने समझा जैसी स्त्रियों की आदत होती है, कुछ ये हमारे तरफ में देख रहा है तो हमारे सौंदर्य के प्रति आकृष्ट हो रहा है और ये है तो इंद्र का ही लड़का, इंद्र ही के समान है, इसलिए वो जाकर के एकांत में मिली और बोली, तुम मुझे पत्नी के रूप में देखना चाहता है, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूं। उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, जब तुम मेरी मैया है तो हमारे तरफ में क्यों देखा? तो इसलिए देखा कि हमारे वंश की तुम मूल माता हो,
तुम्हीं से हमारा वंश ये आया। कैसे आया? उर्वशी से। उनके पूर्व पुरुष जो हैं वो उन्हीं से ही आए। ये हो सकता है चंद्रवंश से, चंद्रवंश में उन्हें से, चंद्रवंश ही संबंधित है। तो उसमें कोई राजा थे उन्हीं से उर्वशी का संपर्क हुआ था, उसी के वंश में ये आए। इसी मैंने देखा कि आज बहुत दिनों के बाद में अपनी कुल माता को मैंने देखा, इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ में तुम्हारी चरणों की तरफ में मैं देख रहा था। ये आज मैं पवित्र हो गया कि मेरी मैया का दर्शन किया। तो उसने कहा कि नहीं, ये स्वर्गलोक में ये सब चीजें नहीं है, यहां पर मैया बैया का कोई भी संपर्क नहीं, यहां पर जड़ शरीर स्थूल शरीर ही नहीं है, इसलिए यहां पर समस्त देवताओं के साथ में रह करके भी पतित्व नष्ट नहीं होता। मैं इंद्र की प्यारी हूं किंतु सबसे मिलती हूं, इसलिए हमारा पतित्व नष्ट इसीलिए नहीं होता। क्यों? ये शरीर जड़ ही नहीं है। तब इससे ऊपर और चले जाओ ब्रह्मलोक में, वैकुंठ लोक में, उससे भी ऊपर ब्रजलोक में जाओ, वहां पर ये स्थूल शरीर रहता है? नहीं रहता है। वहां पर एकमात्र पुरुष है कृष्ण, और बाकी जितने हैं सब स्त्री। इस जगत में भी मनुष्य स्त्री रूप में ही है, ऊपर से ढक्कन लगा दिया, तटस्था शक्ति से हम लोग उत्पन्न है, सब शक्ति तटस्था शक्ति के परिणति हम लोग। पुरुष रूप में आकर के भी वो स्त्री है, क्योंकि वो भोग चाहता है, जिसके अंदर में भोग है वही स्त्री है। इसलिए कृष्ण लीला बहुत ऊंचा है, उसमें जड़ शरीर नहीं, स्थूल मन नहीं, उसमें आत्मा का सभी कुछ है, प्रेम से सब बना हुआ कृष्ण की सेवा के। इसलिए वहां पर दो सुनिए नहीं है, किंतु इस जगत में थोड़ा सा भी डर हो जाए, ऐसे चिंता भी करें तो व्यभिचार में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए ये सब साधन की वस्तु है, साधारण चीज नहीं है। इसलिए कृष्ण के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए। यदि परीक्षित महाराज अपनी मैया को कह रहे हैं कि तुम कृष्ण को अपना प्रियतम मानो तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। कुंती जी मैया है कृष्ण की बुआ माने मां, बुआ और मां में अंतर नहीं होता, और कुंती जी कहते हैं ये गोपियां जैसा भाव हमारा तुम्हारे प्रति हो, ये केवल प्रभु के लिए कृष्ण के लिए संभव, जगत में यह संभवपर नहीं। इसलिए इस जगत में यदि पति कृष्ण का भजन करता है, पत्नी करती है, उसकी बेटी भी करती है, उसका बेटा भी करता है, उसकी नाती भी करता है, नातनी भी करता है, कृष्ण को अपना पति समझ सकता है, उसकी मैया भी समझेगी, उसकी बेटी भी, उसकी नातनी भी, उसकी भी नातनी, वो भी सभी कृष्ण को ऐसा समझ, क्योंकि आत्मा से वैसा संबंध है, स्थूल शरीर से ऐसा नहीं। ये उपासना की बातें हैं। विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी ने इस प्रेम का आविष्कार किया जगत के जीवों के लिए। यदि क्रोध से भगवान को पाया जा सकता है, जैसे शिशुपाल इत्यादि और कंस भय के द्वारा पाया, तो क्यों नहीं कृष्ण से यदि जैसा भी काम भी हो एकांत कृष्ण में, तो उसके द्वारा कृष्ण को सहज भी पाया जा सकता। ये चैतन्य महाप्रभु ने आविष्कार करके दिया। इस चीज को अभी भी हम समझते कि लाखों कोटि में से कोई बिरला ही इस तत्व को समझे, क्यों ऐसा किया, व्यभिचार में उपासना क्यों, उसमें आसक्त होने के लिए, उसमें तन्मय होने के लिए, उसमें तदात्म होने के लिए। सांप आ जाए, एक बंदर आ जाए, बंदर उधर से आया छलांग मार करके कूद गया, हम कथा कर रहे हैं हमारे तरफ में ध्यान आएगा ना उस बंदर की तरफ में, बंदर की तरफ क्यों, कहीं किसी को पकड़ नोच न ले, सांप एक आ जाएगा सब उसमें उत्पन्न हो जाए, ये शत्रु भाव। भक्ति से उतना नहीं होगा जितना काम के द्वारा हुआ, काम उसे भी और प्रबल है, आदमी पागल हो जाता है काम से, वो पागलपन काम कृष्ण क्यों नहीं अर्पित किया जाए, उसके द्वारा ही कृष्ण को पागल आ रहा है समझ में। इसलिए महाप्रभु ने देखा इनकी सर्वोत्तम ऐसा कोई नहीं है जगत में जिसमें काम नहीं हो, वो काम कृष्ण के प्रति लागू हो। इसलिए जैसे एक लड़का या एक लड़की एक सुंदर लड़के को देख करके बस उसके तरफ में मन लग जाता है, इस मन को कृष्ण में लगाओ, संसार में मत लगाओ। इसलिए हरिरेश न चेत वा अवतरी अवतरिष्यत मथुरायां मथुराक्षिरादिता च अभविष्यत यम पृथा विसृष्टि मकरांतकस्तु विशेष तत्मात्र। यदि कृष्ण और राधिका इस जगत में नहीं अवतार लेते, नहीं अवतर लेते इस मथुरा भूमि, मथुरा माने ब्रज में जो मधु, मधु माने रसपूर्ण मधुरापुरी है, उसमें मधुराक्षी श्रीमती राधिका मधुराक्ष कृष्ण इसके बहुत सब अर्थों में यदि जगत में नहीं अवतार लेते तो ये प्रेम अधूरा रह जाता, ये विश्व सृष्टि भी अधूरी रह जाती। सृष्टि विसृष्टि मकरांग मकरांक मकरांक माने क्या है, माने कामांक, ये सब बेकार था ये सृष्टि। भगवान ने इस काम को दिया है, ऐसा कोई पेड़ पौधा जीव जंतु नहीं है जिसके अंदर में नहीं, ऐसा कुछ है प्राणी जो कि स्वजातीय स्त्री के प्रति आसक्त न हो जाए और स्त्री पति पुरुष के प्रति आसक्त न हो, चाहे कुत्ता हो गधा हो भेड़ हो बकरा हो सुअर हो लता हो बुल्ब हो पेड़ हो मनुष्य हो देवता हो गंधर्व हो ब्रह्मा तक पहुंच जाओ शंकर जी तक पहुंचो, है कोई बाकी जिसमें ये नहीं है। जितना भी कोई शंकराचार्य हो जाए जो कुछ भी काम ना छोड़ दे कभी किसी न किसी रूप में ये रहेगा, ये प्रेम है वही जगत में काम के रूप में वहां पर है जरूर। जो हमको दिया है भगवान ने इतनी अच्छी थी, इसका यदि हमको व्यवहार करेंगे दुर्व्यवहार करेंगे तो तुम मरेंगे फंस जाएंगे सबसे, असद व्यवहार किया तो सबसे अच्छी चीज पाएंगे। चाकू है उसके द्वारा हम फल को काट करके खा करके जीवित रह सकते हैं, और चाकू से कोई अपना गला काट ले। बिजली बहुत आविष्कार करके रखते ही घर घर में बिजली जा रही है, रोशनी देती है पंखा देती है कूलर से सब कुछ होता है, और कोई बिजली का तार के ऊपर का कवरिंग हटा करके पकड़ ले तो क्या होगा, वैसे आत्महत्या लोग करते हैं। इसमें भगवान का दोष नहीं है, इस तरह से भगवान ने एक अपूर्व चीज हमको दी है, इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं है। यह प्रेम दिया है हृदय में जब काम साधित है, इसको भगवान के प्रति शुद्ध करके लगा दिया जाए, इसी का नाम प्रेम है, शुद्ध भक्ति है। इसलिए हे सखी यदि इस मथुरा में मथुरा में मधु जहां पर है रस है उसमें हरि जगत को चित्त को हरण करने वाले और मधुर नैनी श्रीमती राधिका जी प्रकट नहीं होती तो यह सारी सृष्टि विशेषता कंदर्प सर्गत विफल हो जाए। कंदर्प सर्ग माने अभी जो बतलाया व्याख्या वो बेकार, किंतु नहीं बेकार नहीं है, संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी भक्ति का सहायक न हो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। कोई भी चीज संसार में बुरी नहीं है, उसका व्यवहार बुरा है या भला है, कोई चीज बुरा है। कृष्ण ने कहा कि संसार में सबसे बुरी चीज हमारे पास ले आओ, अर्जुन को कहा कि संसार में सबसे बेकार की चीज है वो मेरे पास में लाओ, उनका अभिमान था कि हमसे श्रेष्ठ और कोई भक्त नहीं। तो वो बोले इस भाई क्या सबसे बुरी चीज ले जाऊं, खोलते 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 उनको बुरी से बुरी चीज मिली टट्टी, टट्टी को कपड़े में लेकर के ला रहे हैं, तो टचनिकाजी से हमको क्यों ले जा रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं? आ तो कृष्ण के पास। क्यों? उन्होंने कहा कि संसार में जो गंदी सबसे उपेक्षित सबसे बुरी चीज है उसको ले जाओ, ले आओ। मैंने देखा जो तुमको देखते ही नाक सिकोड़ते हैं, और यदि स्पर्श हो जाए तो स्नान करेंगे, कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए मैंने सबसे बुरी चीज तुमको करके मैं ले जाता। क्या ये बुरी? मैं कैसे भी, अरे कल तुमने पूरी पकवान खाया, मैं कितना सुंदर थी पूरी पकवान के रूप में, लड्डू कचौड़ी मान भोग खीर रसगुल्ला में थी, अब तुम्हारे दुर्संग से आज मैं चक्की बन गई। तुम बुरा है कि मैं बुरा? सबसे बुरा तू है। बस उसने छोड़कर के उनको प्रणाम करके लौट आए कृष्ण के पास। बुरा खोजन मैं गया, बुरा दिखान मोर, हमसे बुरा कोई मिला नहीं, कोई भी बुरा नहीं। इसे बुरा कौन है? हमारे संग से पूरी कचौड़ी दाल सुंदर सुंदर अन्न ये सब गंदे हो जाते हैं। इसे संसार में बुरी कोई चीज नहीं है, बुरा है हमारा व्यवहार और सत्यवहार। सबसे मधुर व्यवहार रखो यदि अच्छा होना चाहते। सब चीजों को भगवान की सेवा में लो। पेड़ में पहले होता है उसका मूल छोटा सा गुठली या बीज, बीज से अंकुरित होता है पत्ता कत्ता दाल इत्यादि, फिर उसमें फल फूल लगते हैं और बहुत मधुर स्वाद में हो जाता है। हमारी भक्ति भी पेड़ों की तरफ में पहले श्रद्धा से निकले, अंकुरित हो, फिर इसके और पत्ते निकल करके सुंदर रूप में गोलोक वैकुंठ धाम पार करके वृंदावन में जाकर के प्रेम फल है। इस रूप में देखो, एक कमाल कृष्ण को पेड़ को देखो, हरा कोई भी पेड़ हो कमाल का स्मरण आ जाए, ये कृष्ण के जैसा ही है। कोई कदम वृक्ष देखो क्या समझो, ये राधा जी जैसे। यदि कमाल और कदम्ब पेड़ दोनों साथ साथ में है तो क्या होगा उसकी? राधा कृष्ण को गिरिराज को देखते ही कृष्ण की समस्त सारी लीलाओं का स्मरण, ब्रज की एक एक धूलि कणा कृष्ण का स्मरण करा दी। कोई भी चीज विश्व में ये सख्य भाव जगत में देखते हैं, ये क्या है? उसी का व्यक्तित्व रूप है। वात्सल्य भाव हम देखते हैं उसी का व्यक्तित्व रूप है। जगत में पति पत्नी का प्रेम देखते हैं उसी का व्यक्तित्व रूप है। सब कुछ उसी की छाया इस जगत में, उसी को लेकर के चल रहा है। कृष्णचंद्र जी ठीक ऐसे ही सब लीलाओं को करते हैं, जिसको देख सुन करके आने वाली पीढ़ी भी अभी जो है वो भी हमारे प्रेम में डूब जाए, हमारे तरफ में आकर। कृष्ण की ये सब लीलाएं नहीं होती तो हम लोग परमात्म राज में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आज जिन राजनीतिज्ञों को संसार में डूबे हुए लोगों को कृष्ण से कोई संबंध नहीं, उस पर विश्वास नहीं करते, लड़ करके मर रहे हैं, सब समय अशांत हैं, आप देखो उन्हीं कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करके भक्त लोग बहुत सागर को अनाशी पार करके और भगवान के पास नहीं चले। यही महत्वपूर्ण है कृष्ण रसे रसवान। इस प्रकार से कृष्ण रस के भंडार हैं, जो कोई जिस रूप में उनके पास नहीं जाए, ये जथान माम प्रबंधनते ताम तथा बजा, जिस रूप में उनके पास में कल्प वृक्ष की भांति उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर, जिस रूप में जाए। जतक करिला ये देवता का हम भजन करते हैं, देवताओं का भजन करने से उसकी इच्छा को कौन पूर्ण करता है? कृष्ण ही करता। कोई भी आदमी कर्म करता है इसका फल कौन देता है? वो कृष्ण ही देते हैं किसी न किसी रूप में। दूसरों में शक्ति नहीं है कर्मों का फल देने में, यद्यपि तथापि यद्यपि करिल रस निजाश्चर्वण तथापि रहिलति वंशी पुराण। कृष्ण लीला में उन्होंने सब रसों का आस्वादन किया। रससल भी जब है तो मैया सखा गोपियां कृष्ण को आस्वादन करते, और जब वो
रसिक है तो
सब रस,
रसिक
है आस्वादक है तो उनके प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, इसलिए कृष्ण भोले भाले वाले बन जाते हैं, पौगंड में पौगंड भाव वाले बन जाते हैं, किशोर अवस्था में किशोर जैसे हो जाते हैं, किंतु फिर भी कृष्ण लीला में उनकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हुई। उनकी पहली जो इच्छा है कामना है उसको ये पहले बतला रहे हैं। कृष्ण का है, कृष्ण सोचते हैं, कब सोचते हैं, लीला समाप्त हो गई ब्रज की, द्वारका की लीला भी समाप्त हो गई, दो रूपों में समाप्त हुई, एक तो वह लीला दूसरे लोक में पहुंच गई, दूसरे ब्रह्मांड में सरक गई है? और अथवा यहां पर वो अपनी लीला को संगोपन कर दिया, अप्रकट लीला उनकी चल रही, तीन रूपों में, एक यहां चल रही, एक दूसरे ब्रह्मांड में भी चल रही और वहां पर नित्य हई है, तीन जगह में वो तीन ही कृष्ण काम कर रहे हैं, और उनके परिकर भी इसी तरह से लाखों लाखों बने हुए हैं। जब उनकी ये द्वारका की लीला तक भी समाप्त हो गई तो कृष्ण वहां पर बैठ करके सोच रहे हैं, अनुभवी रस लीला, मैं रस का कारण हूं, रस का कारण मैं, यदि कृष्ण नहीं है तो आत्मा भी नहीं रहेगी, फिर ये शरीर एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन भी घर में नहीं रखेंगे, कीड़े लग जाएंगे, दुर्गंध हो जाएगा, कृष्ण के वजह से आत्मा है और आत्मा के वजह से शरीर है, मन के वजह से ये शरीर, जिस दिन इसका काम पूरा हो जाएगा, जीवात्मा और कृष्ण इससे निकल जाएंगे, बस इसका कुछ भी मूल्य नहीं रहेगा। जीवात्मा के साथ में सब समय कृष्ण है, क्यों है, जैसे कि मिट्टी के घड़े में सब समय मिट्टी है, कोई घड़े से मिट्टी को अलग कर सकता है कभी पके या कच्चे रूप में, जब तक घड़े का अस्तित्व है मिट्टी का भी अस्तित्व, उसी प्रकार से जीव जब है उसी में भगवान है, उनको भगवान को साक्षी होने के लिए अलग से नहीं आना पड़ता, उसी में है ही है, क्योंकि उन्हीं का अंश है, इसलिए जीवों के साथ में सब समय वो रहते हैं, अभी तो साक्षी रूप में है, और जब हम मुक्त हो जाएंगे माया से तब क्या होगा, तब हो सकता है स्वामी के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, प्रियतम के रूप में हो, उनके साथ में आदान प्रदान होगा, किंतु अभी नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं मैं रस का कारण हूं, वही रस अभी हम लोगों में आनंद के रूप में है, आनंद उसी की एक विकृत वृत्ति है सुख, ये सुख की वृत्ति भी दो रूपों में है, गंदी गंदी चीजों में ही सुख हम पाते हैं और कोई कोई अच्छी चीज में ही सुख पाते हैं, है ना, किंतु है ये जितनी भी चीजें सुख और दुख ये सब उसी प्रेम का विकार है जो भगवान के प्रति हमारा है, पूर्णानंदमय अनिचिन्मय पूर्ण तत्व, मैं पूर्ण आनंदमय हूं, आनंदम अयम ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, आनंदमयम ब्रह्म, आनंद आनंदमय, आनंदमय प्रकरण ही उसमें है सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य ने कहा कि नहीं आनंद ही है, आनंदमय नहीं हो सकता, व्यास जी बूढ़े हो गए थे इसलिए वो नहीं समझ सके इसका अर्थ, ये श्रुति का है, उन्होंने संकलन करके रख दिया आनंदमयम, आनंदमयम ब्रह्म, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, व्याकरण संगत नहीं है और श्रुति सम्मत नहीं है, यदि वो ब्रह्म आनंदमय हुआ तो भूमय, भूमय मैंने क्या, गाय का विकार, गाय ने जो कुछ घास फास खाया उसका विकार होकर के हो गया गोमय, गोबर हो गया। इसलिए मैं शब्द का प्रयोग प्रचुर विकार अर्थ में, यदि प्रचुर अर्थ में करते हैं आनंदमय, जो उनमें आनंद है और वो अधिक है तो गलत हो जाएगा, पर उसमें दुख की भी जरूर कुछ ना कुछ अंश है दुख का, तब आनंदमय है ना, इसलिए वहां पर दुख का लेश नहीं है, इसलिए कोई मूर्ति नहीं रहेगा, इसलिए आनंदमय नहीं रह सकते आनंद। किंतु व्यास जी कहते हैं कि नहीं, एक ही साथ वो आनंद है और आनंद मय भी है, आनंद का उपभोक्ता भी, सब कुछ वो है। ये सब दार्शनिक विचार है। मैं पूर्ण आनंदमय हूं, आनंदमय मैंने कृष्ण स्वरूप के लिए कह रहे हैं आनंदमय। आप चिन्मय पूर्ण तत्व, कोई चीज की कमी नहीं, हम अभी अकेले नहीं रह सकते, अकेले रह सकते हैं घर में बंद कर दो तो अकेला, थोड़ी देर में कहेंगे ये भाई हमको बाहर निकाल, क्यों मुझे भूख लगी है, अच्छा सब तुमको घर में रख देते हैं खाना, तो रह सकेगा बिना बातचीत किए हुए किसी से संपर्क में नहीं आकर के रह सकता है, सब कुछ वहां रख दिया गया, बात नहीं कर सकते, किसी से मिल नहीं सकते, ये बड़ी भारी सजा है। इसलिए कहते हैं कृष्ण का पूर्ण तत्व है, चिन्मय है, चिन्मय माने शुद्ध चिन्मय, उनमें जड़ का भाव भी नहीं, कभी पूर्ण होने पर भी यदि हम पूर्ण हैं हमको किसी की आवश्यकता नहीं। बड़े बड़े सुना होगा ऋषि लोग अभी भी हिमालय में या बड़े बड़े जगहों में गोवर्धन में भी छिप करके भजन करते हैं, 5,000, 7,000, 10,000 वर्ष हो सकते हैं, किस रूप में करते हैं वही जाने, कोई वृक्ष बन गए हैं, कोई लता बन गए हैं, कोई पक्षी बन गए हैं, और वहां पर कोई सुख है जानता नहीं है, सुख के रूप में है भजन करते हैं। हिमालय के कंदराओं में बड़े बड़े योगी लोग अब भी निकलते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे समय में महाभारत का युद्ध हो रहा था, मैं उसी समय में तपस्या करने के लिए चला गया समाधि में, अब वहां पर क्या हुआ, अरे वो तो 5,000 वर्ष पूरे हो गए, अब वो तो गए हुए, वो तो सब खत्म हो गया, अब आजकल तो कलयुग का ये इतना समय देखा, तो एक समय में अभी कुछ दिन पहले जब मैं घर पर था पढ़ता था तो उस समय में सुना कि एक रेलगाड़ी जा रही थी बंगाल में, और एक आदमी बहुत लंबा चौड़ा, और रेलगाड़ी आ रही है उसके ऊपर से वो पैदल चल करके उसको पार करता हुआ चला गया, इतना लंबा चौड़ा, लोग देखे तो मर जाएं, सुंदरबन की तरफ में चला गया, कौन था, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी जीवित है, लोगों को दर्शन किंतु छिप करके रहते हैं, ऐसे कितने लोग सब हैं, बड़ी आश्चर्य सब बातें, मन को श्वास को रोक दिया, श्वास नहीं चलाओ, यदि 5,000, 10,000 वर्ष रह जाओ तो फिर वो मरेगा, सांस के चलने से और आने जाने से आदमी फिर शरीर का ये सब नष्ट हो जाता है, तब आदमी मरता है, उसको रुद्ध कर दिया जाए, कंट्रोल कर दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो कोई यदि पूर्ण ही है तो उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है, कृष्ण वैसे पूर्ण में भी पूर्ण है, कृष्ण के लिए ये कहा गया है पूर्णम अदम पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उच्यते पुनश्च पूर्णम एव आदाय पूर्णावे, कृष्ण पूर्ण है किंतु फिर भी राधिका प्रेमे अमार करे उन्मत्त, तो हमारे अंदर में कामना पैदा कर देती है, कौन, श्रीमती राधिका जी, राधिका प्रेमी, राधिका जी का प्रेम से एक आदमी बूढ़ा बैठा हुआ है, कोई काम धंधा नहीं, चुपचाप बैठा। इतने में छोटी सी उसकी नातिनी आई और आ करके उसकी गोदी में बैठ गई और बाबा बाबा कहती हुई उसकी दाढ़ी को पकड़ करके इधर उधर कर रही, कभी इधर उठ रही को उधर उठ रही। अब वो बूढ़ा क्या करेगा, उसे बातचीत करेगा बड़े प्रेम के साथ में, ऐसा बच्चा बनकर के उसके साथ में खेलने लग जाएगा, वो भी खुश हो जाएगी, ये भी बहुत बहुत आनंदित। पहले ये सब हम लोगों के घरों में ऐसा था, आजकल बूढ़े को निकाल करके फेंक देते हैं, बेचारा बूढ़ा क्या करेगा, कोई काम नहीं करने देंगे, उसको पागल जैसा समझते हैं। आजकल अमेरिका में ओल्ड हाउस बनते हैं, किंतु उसे लाभ क्या है, ये सब चीजें नहीं, उनको अखबार दे दिया जाता है, रोटी चाय सब दे दिया जाता है, क्या करेंगे, घर का ये स्नेह है ये नहीं। इस तरह से कृष्ण ऐसे बन करके रसास्वादन करते हैं, स्वयं भगवान परिपूर्ण होकर के। राधिका जी तो अपने प्रेम से कृष्ण को उन्मत्त कर देती है, उन्मत्त माने क्या, राधिका जी के संग में खेलने के लिए एकदम पागल कर देती है, वो छिप करके मिलते हैं, कोई जाने नहीं, ऐसा भगवान परम ब्रह्मा, उनको छिपने की जरूरत नहीं, कभी भी छिप करके मिलना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं। न जानी राधार प्रेम में आज कत बल, राधिका जी के प्रेम में कितना बल है, मैं सर्वशक्तिमान अपने सामने सिंधु, सबका जन्म स्थान स्थिति प्रलय इत्यादि करने वाला ईश्वरों का भी ईश्वर, और हमको उन्मत्त करा देती है। वो प्रेम उनका कैसा है, प्रेम ही जगत में सबसे बलवान चीज है। बाघ को उसकी पत्नी बाघिनी प्रेम से कंट्रोल कर लेती है, एक आदमी को जो बहुत बलवान है, बहुत बलवान सब प्रकार से, ये हिटलर जैसा व्यक्ति, उसको कंट्रोल कौन किया है, हिटलर को एटम बनाया, बम बनाया, विश्व को जला सकता था, किंतु एक लड़की के प्रेम में फंस करके अपने जीवन की आहुति उसको दे दे, वहां पर कंट्रोल हो जाता है। एक प्रेम ऐसा थी, एक हिंसक से हिंसा पशु भी टू टू करके बुलाओ प्रेम से आ जाए। हमने सुना एक नाई था, तो उसको किसी ने अपराध किया, चोरी या कुछ की, राजा ने उसको बाघ के पिंजरे में ढकेल करके और दरवाजा बंद कर दिया, बाघ एकदम उसको खाने के लिए दौड़ा, निकट आया सुन करके और बैठ गया, पूंछ हिलाने लगा बाघ, और कुछ नहीं किया, उससे प्रेम करने लगा, और वो नाई भी उसके सिर पर हाथ रख करके उससे प्रीति करने लगा। राजा ने कहा कि भाई ऐसा क्यों हुआ, आज तक तो हजारों आदमी को ये खा चुका, इसको खाया नहीं। नाई को निकाल करके पूछा कि क्या बात है, ये तुमको कुछ नहीं किया, बड़े प्रेम से तुमसे मिल गया। हजूर क्या कहूं, मैं जंगल में जा रहा था, देखा ये एक रास्ते में बाघ सो रहा है और ऐसे 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 कर रहा है। मैंने कहा ये जरूर इसको कोई कष्ट है, कुछ पैर और में कहीं चुभ गया है। मैं वहां पर पहुंच करके और बड़े प्रेम से उसके उस कांटे को निकाल दिया और मरहम पट्टी करके उसको ठीक कर दिया। बाघ हमारे तरफ में देखा, सुन करके फिर चुपचाप हो गया, फिर वो चला गया। वही बाघ है, इसलिए हमारे उस ऋण का पूर्ण हो रहा है, प्रेम का बदला दे रहा है। राजा ने कहा जो तुम्हारा ये कसूर माफ किया, जो एक जानवर के प्रति ऐसी दया दिखला सकता है, ये कोई भी खराब काम नहीं कर सकता, बस उसको छोड़ दिया। प्रेम एक ऐसी चीज है, प्रेम है। आजकल बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे थोड़े थोड़े कामों में तुनक जाते हैं, ऐसे देखेंगे पैया की तरफ देखते हैं ना, छोटे छोटे सुंदर सुंदर बच्चे, कोई कुछ कर दो मुख खराब करके कर लेंगे, उनको यदि मारपीट करके धमका करके बस में लाने की चेष्टा पर नहीं आएंगे, उनके भावों को समझ करके प्रेम से थपथपा करके उनको लाओ, तो बच्चे बन जाएंगे, आने तो वो बिगड़ जाएंगे। लड़कियां या बच्चे सबके लिए का उसी प्रकार से ये आश्रम को भी वैसे ही समझो, सभी प्रेम के भूखे हैं, जानवर तक मनुष्य की तो बात ही, इसलिए प्रेम से उनको सहला करके उसको समझाने की चेष्टा की जाए। इसलिए कहते हैं प्रेम, ऐसा प्रेम जो राधिका का, जो कृष्ण को भी वस्तुभूत और कंट्रोल करके उनके अंदर में कामना पैदा करता है। राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट सदा हमारे नाना नित्य नचाए उद्भट। ओ मैं जगत का गुरु हूं, सबका गुरु हूं, वंदे कृष्णम
वंदे जगत
जगत कृष्ण जगत के गुरु। किंतु वो कृष्ण का है राधिकार प्रेम गुरु, हमारे प्रेम की गुरु कौन है? राधिका प्रेम गुरु, राधिका का जो प्रेम है वही हमारा गुरु है और मैं उनका शिष्य हूं। अनि शिष्य न तो, मैं शिष्य नाचने वाला हूं, मैंने उनके प्रेम से ये सब नाचना सीखा और ये सब भूल लिया। सदा माय हमें नाना प्रकार के नृत्यों में उद्भट नृत्य, उद्भट माने बड़े जोर से नृत्य कराता है, इसी के लिए एक श्लोक दूसरी जगह दे रहे हैं। राधिका को साधारण स्त्री मत समझो, इस जगत की कोई स्त्री मत समझो, वो कृष्ण की लाडली शक्ति है, इसलिए कृष्ण को भी वो प्रेम से शिक्षा देती है, कृष्ण उसको ग्रहण करते हैं। कस्मात वृंदे इत्यादि श्लोक में अगले दिन पाठ आज ही तक है। आप लोगों में से परमानंदम मित्र ले लिया परमेश्वर विष्णुपाद श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का विरह तिथि है, शरद पूर्णिमा कल है, कुछ लोगों ने आज मनाया, वो विद्ध हम लोग शुद्ध शरद पूर्णिमा के दिन में गुरु महाराज जी का जैसे नित्य लीला में प्रवेश हुआ था उसी दिन से हम लोग आरंभ करेंगे। उपस्थित हुए और गुरु महाराज जी उन लोगों के साथ में हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। हरिहरे नमः कृष्ण जादवाय नमः, जय राधे जय कृष्ण श्री रूप मंजरी पद। और क्या वो क्या है नरोत्तम ठाकुर का है, हरिहरि कविहर हो गए सुन दी ललिता विशाखा बार कविना हो गए, ये सब हम लोग कर रहे थे। विशेष करके जब हरे कृष्ण करने लगे तो गुरु महाराज भी हरे कृष्ण कुछ बार करने के बाद में अंतिम हरे कृष्ण उसके बाद में बस उसमें ठीक संध्या का समय आरती होने जा रही थी, हम लोगों ने आरती भी बंद नहीं किया। ठाकुर जी का माला इधर में गिरा गले से और अपने नित्य धाम में प्रवेश कर सारी रात सब वैष्णव लोग जग करके सिद्धांति महाराज पूज्य पादा है, हम लोग सब समाधि की व्यवस्था की। सवेरे 5 बज गया समाधि संपन्न हुई, घर में आरती आरंभ हुई। उस समय रात भर को अपनी उष्मा को सब लोग छिपाए थे, सेवा में लगे हुए थे, किंतु आरती होने के साथ साथ में सभी लोग भाव विभोर हो गए। उस समय में करुणा की नदी बह पड़ी, आंखों से मुख से सभी लोग रोने लगे। इस तरह से ऐसे शुभ तिथि में गुरु महाराज जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग जैसे तैसे भी एक जगह हैं, विचार भी हो रहा है
आजकल कली काल का दिन, कली नहीं चाहता जो शुद्ध भक्ति का प्रचार है। वो बड़े सिंह विक्रम थे, उनके गुरु भाइयों ने उनको भी ये उपाधि दी थी। क्या पाषंड भजई का सिंह, उनके गुरु भाई थे वो भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, रूपात के अत्यंत प्रिय जैसे गुरु महाराज जी थे वो भी उन्होंने उपाधि दी। यदि प्रभुपाद के विरुद्ध, गौड़ीय संप्रदाय के विरुद्ध जिसने कलम उठाई उसकी कलम को उन्होंने तोड़ दिए, उनका मान अहंकार विद्या सब एकदम चूर्ण विचूर्ण कर दिया। बहुत ही सिद्धांतविद, वैदांतिक, रसिक वैष्णव थे। जब जब उनके सामने गौड़ीय वैष्णव पर कोई विपत्ति आई, सबसे पहले वो रहते थे। प्रभुपाद जी के जाने के बाद में बहुत सी घोर विपत्तियां आई, किंतु सभी लोग इनकी छत्र छाया में, इनके गुरु भाई भी इनकी छत्र छाया में, बिना इनके परामर्श लिए कुछ नहीं करते थे। सभी लोग इनसे परामर्श लिया करते थे, चाहे सिद्धांत का विषय हो, चाहे विषय हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कंट्रोल करने का हो, सब विषयों में इनसे सब परामर्श लेकर के सब करते। इनको प्रभुपाद जी ने उपाधि दी थी कृति रत्न। कृति रत्न, कृति माने क्या है? भक्ति ही कृति है। और कृति रत्न, कृतियों में रत्न क्या है? प्रेमा भक्ति। प्रभुपाद जी एक समय में इनको एक विषय दिया जो परमानंद है। परमानंद प्रभुपाद जी के सब समय साथ में रहते थे, हमारे गुरु महाराज जी के साथ में सोते बैठते खाते पीते थे, दोनों एक ही उम्र के थे। आज इनका गुण वर्णन कीजिए, बस प्रणाम मंत्र से वैदांतिक होने के नाते वेदांत की सभी चीजें, भागवत की बातें, ये सभी लेकर के बहुत ही सुंदर एक भाषण दिया। इसने प्रणाम किया था परमानंद माधव, क्या मुकम करत वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम जत पिता तमहम वंदे परमानंद। वो जो परमानंद जो माधव है उनकी जय दी। और उसके बाद में हो भाग्यम, हो भाग्यम नंद गोप जोक्षम जन्मिक्रम परम तम सनातन आनंदमय अभ्यास। एकदम वेदांत के सब सूत्र और श्रीमद्भागवत के मिलते जीते हुए श्लोकों के द्वारा 8 घंटा बहुत सुंदर विद्वतापूर्ण भाषण। तो बाजी प्रसन्न होकर के बोले, आज मुझको एक वैदांतिक शिष्य मिला, बस अपनी सारी वेदांत की पुस्तकें गुरु जी को दे दिया, तो तुम पढ़ना इसका प्रचार करना। और नहीं देखते हैं जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका ये कर सकते। गुरु महाराज इसीलिए गौड़ीय वेदांत समिति का, गौड़ीय वेदांत। गौड़ीय वेदांत क्या है? बलदेव विद्याभूषण जी ने, गोविंद भाष्य ने जो स्थापित किया, जो गोविंद की भक्ति, गोविंद ही वेदांत के प्रतिपाद्य विषय है। निर्विशेष ब्रह्म ने इसकी स्थापना की और इसके लिए उन्होंने हम लोगों का नाम रखा भक्ति वेदांत बामन, भक्ति वेदांत विक्रम, भक्ति वेदांत नारायण, भक्ति वेदांत। अभी पहले तीन ही हम लोग थे, तीन ही हम लोगों को पहले संन्यास दिया। हम लोग लेने के लिए राजी नहीं, किंतु उनकी देने की इच्छा। अंत में हम लोगों ने काज, हम लोग का आत्मसमर्पण कर दिए हैं। आप चाहे लंबोधी में रखिए, ब्रह्मचारी वेश, गृहस्थ वेश, सन्यासी, परमहंस वेश, जो आपकी इच्छा है उस। इसके बाद में हम लोगों को संन्यास दिया, आज उन्हीं की कृपा है कि सभी लोग आदर करते हैं हमारी, हम लोगों की बातों को सभी लोग सुनते हैं, इसलिए गुरु के प्रति वैसे ही समर्पण होना चाहिए जैसा कि हम लोगों ने समर्पण किया था। उन्होंने अपने गुरु जी के प्रति अपने को आत्मसमर्पण किया था, उनका बल था गुरु निष्ठा, सभी लोग स्वीकार करते हैं, सभी लोग स्वीकार करते थे जबकि प्रभुपाद के सब गण थे उस समय में, पूज्यपाद भारती महाराज, पूज्यपाद भन महाराज, पूज्यपाद श्रीधर महाराज, पूज्यपाद माधव महाराज, पूज्यपाद गिरी महाराज, पूज्यपाद बड़ी थानस महाराज, ये सब बड़े बड़े महारथी ये सब थे, पूज्यपाद नैनी महाराज, उन लोगों की तुलना में हम लोग कुछ नहीं, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे सिद्धांतविद, बड़ी बड़ी सभाओं में संस्कृत भाषा में या शुद्ध भाषा में बंगला में या हिंदी में बोलने वाले, वहां पर अपने विचारों की प्रतिष्ठा करने वाले ये सब लोग, सब लोग गुरु महाराज जी का आदर करते, यहां तक कि गुरु महाराज ने को प्रभुपाद ने 3 बार संन्यास देने के लिए कहा, किंतु व्यवस्थापक जो थे या और लोग थे, देखा जैसे ये संन्यास ले लेंगे तो तब व्यवस्था कौन करेगा, तब तो वो व्यवस्था में नहीं रहेंगे, मायापुर में रह करके उसकी को चलाना, उसकी व्यवस्था करना, प्रचार इत्यादि की व्यवस्था देखना, इसलिए उन लोगों ने 3 बार ही प्रभुपाद से कष्ट करके उनको रुकवा दिया कुछ दिन के। तब प्रभुपाद जी के प्रकट होने पर प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा मिशन ध्वंस हो रहा है, तुम जल्दी से संन्यास लो, तब उन्होंने संन्यास लिया। पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी से, श्रीधर महाराज उनसे जूनियर थे, बहुत पीछे, यहां तक कि पूज्यपाद बामन महाराज जी से भी पीछे आए हैं, बामन महाराज जी भी कालभूषण जी महाराज हैं, बहुत पहले आए हुए हैं, बहुत गुरु वैष्णव की सेवा की है, तुम लोग को पत्ता देने में लज्जा आती है, उनका पत्ता देना, पत्ता परोसना, पत्ते को धो देना, फिर उसमें नमक देना, नींबू देना और पानी देना, उनका ये काम था, सब्जी अमान्य करा बचपन से ही, तरकारी अमान्य कर, उसमें श्रद्धा से लोग करते थे, वैष्णव आ गए उनका आदर कर, और हम लोग को ऊपर से बुलाना पड़े, जाओ उनको बुला लाओ तो 5 बार टेलीफोन करने पर भी आदमी भेजने का भी कोई यहां पर मिलता ही नहीं, जब किसी को बुलाए, कोई रह गए तो पीछे के घर में आराम के साथ में, पहले ऐसा नहीं, जहां घंटी बजी आती थी सब लोग आतुर होकर के दौड़ते, हमने ये सब देखा था, आतुर होकर के जहां प्रसाद की हुई सब लोग आ गए, सेवा की भावना उस समय थी। गुरु जी के स्मरण में हमने देखा है कैसे सेवा होती है, कैसे भजन होता है, कैसे श्रद्धा होती है, तो मैं उनके वो बतला रहा था, सिद्धर महाराज जी से संन्यास लिया, सिद्धर महाराज जी से जूनियर थे, पीछे आए हुए थे, किंतु वकालत पास करके कुछ दिन प्रैक्टिस करके आए थे, तो जिस समय आश्रम में आए मायापुर में, भाई बहुत सुंदर बन रहा है यहाँ आश्रम, और यहाँ पर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी यहाँ पर विराजमान है, उनके दर्शन करने के लिए आए, तो देखा ये एक छोटा सा लड़का उम्र में, गुरु महाराज जी से उम्र में श्रीधर महाराज जी बड़े थे, किंतु पीछे आए, तो जिस समय आए थे नवयुवक रूप में, उस समय गुरु महाराज जी की उम्र हार्डली से 20 वर्ष की हो, और उस समय उनकी उम्र 25-30 वर्ष की थी श्रीधर महाराज जी, तो उस समय में वकील लोग जैसे रहते हैं वकील उसी रूप में आए, देख रहे थे, देखा जाए एक छोटा सा लड़का चेयर पर बैठा है, पैर पकड़ ऐसे कर करके हिला रहा है, और एक छड़ी रखी हुई है बेल्ट की, बड़ी सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, शांतिपुरी धोती और पंजाबी पहने हुए हैं, और ऐसा
जो आंख बंद करके एक करता है पेड़ के नीचे ऐसे कर रहा है। और देखा एक बहुत तगड़े लंबे चौड़े सन्यासी आकर के उनको प्रणाम किया, कुछ देर खड़े रहे और वो चेयर और टेबल पर पैर रख करके और ऐसे करते हुए उनसे बातचीत पूछ किया और फिर उनको वो सन्यासी प्रणाम करके गए। देखा ये कौन ऐसा ब्रह्मचारी है अभी और उसको इतने लंबे चौड़े और इतना बड़े सन्यासी और उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये साधारण कोई आदमी नहीं मालूम है। लोगों से पूछा कि ये ब्रह्मचारी जो वहां पर बैठे हैं ये कौन है, तो यहाँ के वही अभी मालिक समझिए प्रभुपाद के बाद में यहाँ की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, बहुत तेजस्वी ये लड़का है। एक दिन में ही मुसलमानों का बरगा मायापुर के रूप में एकदम बदल करके एकदम दिव्य ये बना दिया। सब लोग उसे थर थर कांपते हैं, कोई भी परामर्श होता है इनसे लोग करते हैं, देखने में ऐसा है किंतु बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण और सिद्धांत विद है। पीछे से प्रभुपाद के पास में गए और इसके बाद में आकर्षित होकर के मठ में चले। बहुत ही शास्त्रीय तर्क वितर्क इत्यादि करते थे सिद्धांत, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि। उनसे और कोई इस विषय पर सुनते थे उनके विचारों को खंडन मंडन करना कोई नहीं करता था, किंतु गुरु महाराज जी से जब भेंट होती तो गुरु महाराज जी के साथ में वो जो कहते ही वो काट देते और वो जो कहते ही इनको ये काट देते। एक समय हमें याद है गुरु महाराज जी के साथ में हम लोग गए थे, गुरु महाराज सन्यासी थे और उनके पास में हम लोग गए थे, वर्ष में एक बार जाते थे सन्यास गुरु को सम्मान देने के लिए, तो वो गए थे। भाई श्लोक था कृष्णे जस मनुष ग्रीन तंग मनुषा ग्रियत विख्यात चेत भजन तमें संसुप से आ भजन विज्ञमनन्न सुन्न आनन्न मन्न निंदाद सुन्न हृदय में क्षति संवलत्वा कृष्णे जस ग्रीन मनुषा आग्रियत। जो कृष्ण नाम जिसके युवा पर एक बार है उसको मन ही मन आदर करो, क्या समझता हमारे गोष्ठी का है, विरोधी मत समझो, दीक्षा नहीं है कोई भी बात नहीं, उसको आदर करो। और चेत दीक्षास्ती, दीक्षा हुई है तो क्या करो, मन्नन भी प्रणाम करो और साथ ही साथ में सत्संग भी प्रणाम करो, उसका आदर करो। और यदि निंदा भी शून्य होकर के किसी की निंदा वंदना नहीं करता, वंदना करता है वैष्णव की भगवान की ये सब, निंदा तो किसी की भूल करके ही नहीं करता, किसी का दोष नहीं देखता। और संबंध ज्ञान से युक्त अनर्थ से रहित होकर के भगवान का नाम करता है, ऐसे वैष्णव को अत्यंत आदर के साथ में उसकी सेवा करो। और एक चतुर्थी इसमें और भी हो जाएगा जो इसे ऊपर उठ करके अष्टकालीय लीला इत्यादि का स्मरण करते हैं कीर्तन करते हैं, जिनके देखने से ही कृष्ण नाम आता है, ऐसे महापुरुष को अपना हृदय समझ करके सर्वस्व उनके चरणों में समर्पण करके भजन को। रूप गोस्वामी ने लिखा इस पर विचार हो रहा था, भक्ति विनोद ठाकुर का कुछ ऐसा देखने से पढ़ने से ऐसे मालूम होता है इसकी व्याख्या में, यदि कोई भी व्यक्ति हो किंतु एक बार मुख में कृष्ण नाम आने से उसका आदर करो। और प्रभुपाद ने चेत दीक्षास्ती को आगे लाया, जिसकी दीक्षा हो गई है, जिसका अनर्थ दूर हो गया है, अनर्थ पूर्ण रूप से नहीं हाँ दूर होने लग गया है, नष्ट प्रायेशु अभद्रेशु अब कुछ हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को जो संबंध ज्ञान के साथ में गुरु से दीक्षा लेकर के और भजन कर रहा हो उसको मन ही मन आदर करो, मन से आदर करना माने क्या, ऊपर से प्रणाम किया और आदर मन से नहीं रहता तो इसमें क्या क्या रहा, ऐसा नहीं, मन से आदर करो, हमारा ये गोष्ठी क्या है। और निंदा भी सुनना संबंध ज्ञान युक्त रहे प्रणत विषय मनसाग्रिय प्रति इत्यादि के द्वारा और साथ साथ में मन के द्वारा आदर करो। और इसके बाद में वो सब थी।
इसमें विचारों की भी भिन्नता ये रही,
भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा एक बार कृष्णा, और कुछ लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी तो कहते हैं दीक्षा से, तो
इसलिए हमारे समस्त आचार्य ने कहा,
रूप गोस्वामी ने भी कहा और दूसरी जगह भी कहा रघुनाथ गोस्वामी ने और सब ऐसा कहा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का विचार ठीक जान पड़ा, इसलिए हम लोगों को उन्हीं का विचार लेना। और कुछ लोग कहे जितना प्रभुपाद जी ने लिखा है सर, इसी में चला था, इतने में गुरु महाराज जी गए, गुरु जी महाराज जी के सामने यही विचार आया। गुरु महाराज जी ने कहा कि भक्त विनोद ठाकुर को आपने कैसे जाना, ये महापुरुष है। रूप गोस्वामी को आपने कहां से पहचाना, आपके गुरु जी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं तो पहचाना है, वो यदि नहीं रहते मीडियम तो नहीं जान सकते थे। आपकी आंख तो उन्होंने खोली, क्योंकि उन्होंने आंख खोली हमारी, उसको छोड़ करके और डायरेक्ट वहां पर हम जाएंगे उनको समझने के लिए, तो गलत हो। भक्ति विनोद ठाकुर का ये एक्सप्लेनेशन क्या उन्होंने सुना था, प्रभुपाद जी ने जरूर सुना था, उन्होंने ही तो उपदेशामृत की पुस्तक को प्रकाश किया भक्ति विनोद ठाकुर। इसलिए मेरा विचार यह है कि हम जो जो कुछ भी देखेंगे प्रभुपाद की आंख के माध्यम से हम लोग कुछ देखेंगे, उसके लिए तो प्रभुपाद जी के कथाओं के माध्यम से उस चीज को समझने की चेष्टा करें, अलग रूप में नहीं। आया समझ में? जो कुछ हम विचार करेंगे प्रभुपाद जो करें वो ठीक करें और उन्हीं का अनुसरण करके हम चलेंगे, ये गुरु निष्ठा है। अंत में सब लोगों ने गुरु जी की आत्मा, इसी तरह से और भी बहुत से विचारों को हमने देखा है। गुरु महाराज जी की ऐसी पक्की निष्ठा थी, गुरु प्रभुपाद जो कह रहे हैं वही ठीक है। प्रभुपाद जी साधारण तो आचार्य थे नहीं, मुक्त कुल उपास्य थे, एकदम जगत को उन्होंने पलट दिया, ऐसे ही आचार्य थे। इसलिए गुरु महाराज जी की ऐसी ही निष्ठा थी। यदि प्रभुपाद के विरुद्ध में एक कलम किसी ने लिखा, गौड़ीय वैष्णव के विरुद्ध में लिखा, प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी साथ ही साथ में उसका प्रतिवाद करते, बहुत बार हमने देखा है। यही हम लोगों का परम सौभाग्य है कि ऐसे मुक्त महापुरुषों के संपर्क में हम लोग, और उन्हीं की कृपा से उस समय में गौड़ीय मठ के जितने भी धुरंधर लोग थे, पूजा सिद्धर महाराज जी, गुरु महाराज जी का प्रकट होने के बाद भी मैं उनसे गया हूं मिला, बहुत ही सुंदर हरि कथा इत्यादि प्रदर्शन करते। मैं कभी कभी लोक से जाता था गुरु महाराज जी के अप्रकट के बाद, अन्य तो उनके साथ में जाया करता था। सौकी महाराज को जो बात उनमें से तुम लोगों ने किसी ने देखा है, सिद्ध महाराज जो थे, वन महाराज को जो बात थे, भक्ति विलास तीर्थ महाराज जी थे, माधव महाराज जी थे, बाकी नैनी महाराज थे, सिद्धांति महाराज जी थे, अद्भुत अद्भुत धुरंधर हम लोग का सुयोग होगा ये सब देखने का और सुनने का। इसलिए हम लोग कठिन से कठिन परिस्थितियों में शादी घबराते नहीं, आप लोग भी उनके उपदेशों को सुन करके अपने को ऐसा बनाएंगे जितना भी कलिकाल कोई भी विरोधी वातावरण पैदा करना, तभी हम ठीक रहेंगे अपने गुरु वैष्णव के विचार से, घबरा नहीं जाएंगे, ऐसा रहना चाहिए। जिस समय में वो बाग बाजार को छोड़ करके आए प्रभुपाद मठ को, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं ऊपर से, तो उस समय में पैसा नहीं, एक भी पैसा नहीं, और बहुत से वैष्णव उनके साथ में थे 40-50, अकेले नहीं रहते थे, सांगठनिक शक्ति उनमें अद्भुत थी बचपन से ही, बहुत ही सिंह जैसे लगते थे किंतु भीतर से बड़े कोमल, विशेष करके अंतिम समय में बहुत कोमल हो गए, बहुत कोमल। पहले इनकी इतनी रास भारी थी, रास मैंने तेजस्वी वो थे, बड़े बड़े महाराज लोग भी उनके समीप में नहीं जा सकते, और हम लोग कुछ समझ यही नहीं, जब उनके चले गए
उनकी सेवा की, रसोई बनाया, कपड़े भेजे, उनके साथ कुछ किया, उनके खाद को पलंग को बैठ करके चरण भी दबाया और सब समय तर्क वितर्क लगे रहते थे। हम लोगों पर कभी भी असंतुष्ट नहीं, हंसते हुए समस्त प्रश्नों का उत्तर देते थे, काम में लगाते थे। मैंने कभी इनके विचार का आज्ञा का कभी विचार नहीं किया, कोई आदेश दिया ये ठीक है कि गलत है, ये क्या है, हमने कभी विचार ही नहीं किया। इतना पक्का उनके ऊपर मैं भरोसा था, श्रद्धा था। कहा बस मैं कूद गया, जिस अवस्था में उसी अवस्था में, यहां तक कि आदेश दिया हमने समझा नहीं और दौड़ गया कि क्या करना, पीछे सोचा गया क्या करने के लिए भेजा। तो देखो महाराज जी बोल भाई इसलिए भेजा, मतलब आपने आज मेरी रक्षा की। गुरु महाराज जी जानते थे इस सबसे, अब तो दिक्कत महाराज क्या था, गुरु महाराज से रोज लड़ाई हो जाती, लड़ाई मैंने वैसे ही बात भी टंडा हो, गुरु महाराज जी ये काम करना है, कैसे होगा ये तो बड़ा भारी मुश्किल है, और यदि वो आदमी नहीं मिला तो यदि ऐसा हो गया तो तरह तरह से, किंतु जानते थे गुरु महाराज जी ये काम लेगा तो ये कर देगा, और हम लोग भी शिशु थे ना, इसलिए हम लोगों पर उनका विश्वास, जाएगा करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए तो देखो महाराज इत्यादि को कोई काम दे देते, बामन महाराज जी को, बामन महाराज जी चुपचाप सरल सीधे, वो भी हमारे जैसे विचार नहीं करते थे, बड़े गंभीर रहते थे, बोलते कम थे, अभी भी बोलते कम है। तो देखो महाराज जी वैसे ही थे, लग जाता कभी वेदांत हमको सुनाइए तो पढ़ लो जा करके, दो चार बार कहेंगे जो हमको कुछ बतला दीजिए और चुपचाप बैठ जाते, कभी जाओ पढ़ लो, अंत में उन्हीं के सामने कभी दे दीजिए पुस्तक हम चलो। हम लोग कभी ऐसा कभी थोड़ा सा जिसमें विद्या का अभिमान कुछ हो सकता है, हमने उनके भी कमरा को मैं नहीं कहा, वो गुरु महाराज जी सोचते थे ये जान बुझ करके, या क्यों उनकी ऐसा,
बता रहे थे, बोले
मैं
देख लो,
हमको भी कहते हैं आप उनके साथ में तर्क वितर्क करके सब आपको बतलाया, हम लोगों को नहीं बतलाया, मुझे बहुत पीछे में है, बान महाराज जी सबसे पहले आए, शायद 10-12 वर्ष की उम्र में आ गए, उनकी नहीं आती थी, देखो महाराज हमसे बहुत पहले आए, इसके बाद में मैं सबसे पीछे आया, उनको भी देखने वाले में शेष आई यहां है, और मंगल महाराज जी को उन्होंने दीक्षा दी थी, हाँ कालाचंद प्रभु
रंगनाथ
वो भी है कागभूषण भी, बहुत पहले का है, ये हम लोग चार आदमी और कौन, और कोई नहीं, यही चार आदमी हम, मैं
उमा दीदी देखी थी,
छोटी सी लड़की थी, कॉलेज के स्टूडेंट थी, बड़ी तेज थी, बड़ी सुंदर सुखांत उस समय में थी, गुरु महाराज जी इसको स्नेह करना चाहते, गले में माला देना चाहते, किंतु वो अभी नाराज थी, उसकी मैया इसको ले आती, किंतु गुरु महाराज जी ने उसी समय इसको ग्रहण कर दिया, बड़ी सौभाग्यवती है, उन्हीं की कृपा से आज मठ में रह रही है ब्रह्मचारी लोग, और बड़ी विदुषी है पढ़ने लिखने और ये सब सिद्धांत इत्यादि के विचार में थी, तो यही कुछ लोग हम लोग हैं, पुराने आदमी सब चले जा रहे हैं। एक आश्रम महाराज थे, गुरु महाराज ने जब आरंभ किया सुखानंद, उनकी चरण सेवा की, गुरु महाराज जी का ये किया प्राकृतिक चिकित्सा, उनके चरण दबाए, उनकी सेवा की, एक ये यही कुछ लोग, धीरे 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 हम लोग कमते चले जा रहे हैं। गुरु महाराज जी के अत्यंत प्रिय थे सत्य विक्रह प्रभु, उनको मैंने देखा है करीब करीब 25-26 या नहीं और थोड़ा सा उम्र पर 25-30 वर्ष की उम्र में, 32 वर्ष, बहुत ही सुंदर लड़के सत्य विग्रह जी, अब वो आश्रम महाराज हो गए, अब तो 80 वर्ष से करीब उम्र थी, अभी उनको प्रकट हो गए मोनीमान प्रभु और सत्य विग्रह प्रभु, अभी कल पास हो गए,
तारीख
या
पांच तारीख
वो इतना सुंदर मृदंग बजाते एक एक बोल पर प्रेम करके अब दस हाथ घर में चले जाते फूल के साथ मृदंग करके ऐसा सुंदर है। अब मोहिनी प्रभु वैसे वो तो कृपण सम्राट थे, इन्हीं दोनों को घर से ले आए गृहस्थ ये लोग थे और इन्हीं लोगों को अपना दया दया स्तंभ करके मेदिनीपुर और कहां कहां सारे बंगाल में उसमें इन लोगों का सुविधा कंठ ऐसा था जो अद्भुत कीर्तन करते थे। नव ब्रजमंडल परिक्रमा में आप ये सबके आंसू छा गए सब लोग रोने लगते ऐसा सुंदर कीर्तन कर। आज कुछ दिन हुआ चार पांच दिन हुआ
पांच तारीख को
अप्रकट हो गया। अब धीरे धीरे उनके जितने गण है कल बात के गण में से अब केवल वही हमारे गौरी वेदांत समिति में थे और दूसरा कोई अब नहीं रहा सब धीरे धीरे। अब हम लोग अभी धीरे धीरे जगत से चल रहे हैं हमारे गुरु भाई लोग अभी कुछ है धर्म का मैं जाने पीछे क्या होगा ये सब इसलिए उन्हीं की शिक्षा को लेकर के वैसा ही गुरु निष्ठा हम लोग होना चाहिए जाके रहेंगे गुरु निष्ठा के साथ में जीवित रहेंगे ऐसा ही आदर्श चरित्र उनकी सेवा के लिए प्राण समर्पण करते हमको तो याद नहीं है मैं बिना गुरु जी के आदेश से कहीं भी एक सेकंड के लिए कहीं बाहर गया कभी कल महाराज जी को या कभी कल महाराज जी जब तक उठे या अभी तक नहीं उठे ऐसा रहा एक सेकंड के लिए भी बहुत बहुत नहीं भक्ति ऐसी आसान चीज नहीं है जो उत्तर आएगी कम से होगा इसलिए जैसे कल पापी कहता है कि उनका
वंशगत कोई चीज नहीं है। प्रहलाद महाराज जी के वंश में विरोचन आया तो विरोचन को हम ही गुरु पुत्र मानेंगे ऐसा नहीं गुरु का आदर होना चाहिए। यदि किसी गोस्वामी के वंश में कोई लड़का हो और भजन नहीं करता उसको कुछ ज्ञान नहीं है तो उसको गोस्वामी मान करके ये राधारमण जी के गोस्वामी है ये मदन मोहन जी के गोस्वामी है और चाहे वो धर्म से विपरीत करें नहीं गुरु का यथार्थ आदर किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति यदि भगवत भक्ति करता है तो वही समाज में सबसे उन्नत है उसको आदर करना चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं है वो जितना ही पढ़ा लिखा जो कुछ भी हो भक्ति के लिए आदर नहीं गुरु जी का भी ऐसा ही विचार तो उन्होंने उसी स्थान में जहां पर प्रभुपाद का आक्रमण हुआ था प्रभुपाद जी की इच्छा के लिए वहीं पर बीच में शहर में एक विशाल मंदिर किया वही गौड़ीय देवानंद गौड़ीय मठ। मैंने कहा कि ये मायापुर नहीं है प्राचीन ये क्या है पुराण कोलदीप है। प्रभुपाद के समय में ये सब करने का सामर्थ्य किसी में नहीं था गुरु महाराज जी के समय भी नहीं था किंतु उन्होंने सब चीजों को स्थापित किया। आज सब लोग जानते हैं कि ये कोलदीप नवदीप है और उस पार में माया इस तरह से गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी के बाद में यदि वो नहीं आते तो हमारा ये सब कुछ चौपट हो जाता आज उन्हीं के देखा देखी सब फिर वैष्णव लोग फिर प्रचार में लग गए भजन करने लगे नहीं तो ये ब्रह्मचारी सन्यासी लोग गृहस्थ बनने लग गए अधिकांश इन्होंने ही सबको रोक करके और फिर से इन लोगों को भोजन भजन में लगाया आज इन्हीं की कृपा से ये सब गौड़ीय मठ स्थापित हुआ हो रहा और सब जगह भारतवर्ष में सर्वत्र प्रचार हो रहे हैं। अभी गुरु महाराज जी ने जिनको संन्यास दिया वो प्रभुपाद जी के शिष्य पाश्चात्य देशों में जाकर के कुछ दिनों में ही समस्त विश्व में गौड़ीय धर्म का प्रचार किया ये इन्हीं महापुरुषों का शक्ति। अभी कलाचंद ब्रह्मचारी जी अपना द्वैत स्मरण करके गुरु महाराज जी के जीवन चरित्र का और दो एक बातें का करके पुष्पांजलि देंगे इसके बाद में मंगल महाराज जी से